Ram Ram Hare 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 Krishna. हास्य भद्रा बलदेव जी महाराज जी की पतित पावन करुणा हर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत कोटि वैष्णव बृंद की गौर हरि प्रेमानंद जय समेत भक्त बृंद। अब क्या करना है? अभी टाइम है और टाइम से पहले चालू हो जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? अरे हम लोग तो दुनिया के उद्धारक हैं तो हम लोगों को ज्यादा जरूरत है ना सुनना। वो माता लोग मुझे तो बस की बात नहीं है आज की कथा। अच्छा है कि हम ही लोग हैं, हमारे जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव गौर निताई प्रभुपाद जी वैष्णव बृंद हैं। कुलगाधा रानी की नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवाहिकसारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजनेस्तारिणे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरमाई राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्त्रीणां मतहत बंधूनां द्रोहो यो सा विहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधियैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुम् स्त्रीणां मतहत बंधूनां द्रोहो यो सा विहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधियैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुम् स्त्रीणां मतहत बंधूनां द्रोहो यो सा विहोथितः कर्मभिर्गृहमेधियैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुम् बोलिए नाहं कल्पो व्यपोहितुम् स्त्रीणां मतहत बंधूनां कर्मभिर्गृहमेधियैर् एक बार फिर बोलो, डरो मत, निश्चिंतता पूर्वक बोलो। स्त्रीणां मतहत बंधूनां कर्मभिर्गृहमेधियैर् नाहं कल्पो व्यपोहितुम्
बोलिए।
कर्म भी गृह में धीय ना हम कल्पो व्यपो हेतु। और ऊपर वाले मुंह घुमाने से क्या समझ रहे हैं कि मैं देख नहीं रहा हूं? उच्चारण ठीक करने के लिए ही तो आया हूं। स्त्री नाम मत हत बंधु नाम, पुनः बोले इसी को, मत हत बंधु नाम। ओ हा है, हा पढ़िए ना आप, हा है प्रभु, पढ़िए ना। हाँ, स्त्री नाम मत हत बंधु नाम, यो सा विहोथिता कर्म भीर गृह में भी यही ओ ही तुम ना हम कल्पो व्यपो ही तुम। कितना बढ़िया बोली, उस दिन में और आज में नहीं अंतर है? बहुत अंतर है। बात ऐसी है कि बोलने से डरना नहीं चाहिए, जब यहाँ नहीं सीखेंगे तो फिर कहाँ सीखेंगे? हम लोग अपने सेंटर में हैं, अपने घर में हैं, तो यहाँ पूरा अभ्यास कर लेंगे तब ना हम लोग अखाड़ा में जाएंगे लड़ेंगे। ये घर की अखाड़ा है, और बाहर जाएंगे तो बाहर के अखाड़ा में हमको लड़ना पड़ेगा जमकर, दंगल जिसको कहते हैं। स्त्री नाम, स्त्रियों के मत मेरे द्वारा, हत बंधु नाम, हत बंधु नाम मारे गए मित्रों का द्रोह शत्रुता, यह जो आप लोग श्लोक को देखिए, जब हम कथा में हैं तो दुनिया के सबसे बड़ा काम है यही, सारे कामों से बड़ा काम यही है। तो जब हम यहाँ बैठे हैं इसी को नहीं देखेंगे तो फिर क्या वहां जाकर दाव मारेंगे? कुश्ती करते समय आंख पहलवान पर रहती है, वो आंख अगर इधर उधर हुआ तो दाव मार के गिरा देगा, समझ गए ना? तो हम जब सुनेंगे तभी ना समझेंगे। देखना है कि प्रभुपाद जी कैसे कैसे शब्दार्थ किए हैं। यह जो असौ ये सब इहा यहाँ उत्थित संचित हुई है कर्म भी कार्य करने से गृह में धीयै भौतिक कल्याण में लगे मनुष्यों द्वारा न कभी नहीं अहम मैं कल्प आशा कर सकता हूँ व्यपोहितुम उसे मिटाने का। प्रभुपाद जी ने लिखे हैं उसे मिटा पाने की। अनुवाद भी बोलिए हमारे साथ। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तात्पर्य पड़ता है गृह मेधी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल जाती है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से ऐसे महान पाप से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति भाई पिता पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका समन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है, यह एक ही साथ क्रिया और फिर उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ती जाती है। श्रीमद्भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 27वें एवं 28वें नंबर के श्लोक में इसका उपचार समझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे। अतः एवं पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं गया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। जो अन्य लोग निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा। महाराज युधिष्ठिर के चरित्र आप सब कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, किंतु जगन्नाथ सुभद्रा एवं श्री बलदेव जी महाराज गौर निताई प्रभुपाद जी के कृपा वैष्णवों की कृपा से हम भी 13 तारीख से सुन रहे हैं, क्योंकि 12 तारीख को रात्रि में है तो उस दिन तो छूट गई थी, लेकिन 13 तारीख को शुद्ध सेवक प्रभु के मुखारविंद से सुनने को मिला, और अब तक मिल ही रहा है। बीच में श्री कमल लोचन प्रभु भी आए थे, उनके मुखारविंद से भी सुनने को मिला, तो अभी तक सुन ही रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं भगवान के। हरिदास वर जो इनको हरिदास वर्ज कहा गया है। हरिदास वर्ज तीन लोगों को भागवत में कहा गया है, किनको किनको? एक उद्धव जी को, एक भगवान गिरिराज जी को और एक महाराज श्री युधिष्ठिर जी को। तो हरिदास वर्जों की श्रृंखला सुने, उसी हरिदास वर्ज में से एक हरिदास वर्ज चक्र चूड़ामणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने हजारों हजारों स्त्री नाम माने बहुत अनेकों, जब 18 अक्षौणी सेना मारी गई है तो उसमें सब गृहस्थ ही थे, ब्रह्मचारी लड़ने के लिए तो केवल भीष्म पितामह ही थे, बाकी सब गृहस्थ ही थे और सब मारे गए, उसमें से कुछ ही बचे हुए हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि इतने लोग मारे गए तो उनकी स्त्रियां तो विधवा हुई ना। 18 अक्षौणी सेना जब मारी गई है तो 18 अक्षौणी लगभग 18 अक्षौणी सेनाओं के स्त्रियां विधवा हुई ना, उनका सोच बड़ी दूर तक है। तो उसी को कह रहे हैं स्त्रीणां मतहत बंधुना, स्त्रियों के हजारों हजार लाखों लाख स्त्रियों के बंधुओं का हमने बंध किया है, हनन किया है। और इसको करने से द्रोह हुआ है, बहुत भारी शत्रुता मोल ली गई है। और इसको शास्त्रों में जो बड़े बड़े यज्ञ विधान किए गए हैं कि ऐसा पाप करने से, ऐसा प्राचित करने पर मुक्त हो जाता है व्यक्ति, उन सबको करने के पश्चात भी अहम व्यपोहितो कल्प न, कल्प माने समर्थ अर्थ में है। यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि कोई पाप बन जाता है तो पाप करने के पश्चात प्रायश्चित करने से पाप दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि सकाम कर्म करते हुए भी, वैदिक धर्म के अनुसार कर्म करते हुए भी, न चाहते हुए भी, अवांछित नहीं अवांछित अनिच्छित कर्म हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, उसका भी पाप लगता है। और यहां तो प्रत्यक्ष रूप से बध किया गया है तो अवश्य में वह पाप लगेगा। तो जान में अनजान में जेन के न प्रकार न किसी भी तरह पाप होने का जो पाप लगता है, तो यहां हमने तो जानबूझकर ही बध किया है, कोई अनजान में तो बध नहीं किया है, तो इसका तो अवश्य हमको भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए शास्त्र विधान करता है कि जैसा पाप है वैसा प्रायश्चित कर लेने पर मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है, कर्म बंधन से व्यक्ति छूट जाता है। किंतु यहां कह रहे हैं कि ऐसे अश्वमेध यज्ञ आदि का विधान किया गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ तो ऐसा है कि उस यज्ञ को करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी समाप्त हो जाता है और छोटे मोटे जैसे तैसे पाप हो गए हैं तो उसको भी तीर्थ भ्रमण आदि करके या दान पुण्य करके, यहां तक कि ब्राह्मण हत्या हो गया है तो अश्वमेध यज्ञ करके समाप्त किया जा सकता है, और भी जीव हत्या हो गई है ब्राह्मण के अतिरिक्त भी, तो भारत के पवित्र नदियों में भ्रमण करके समाप्त किया जा सकता है। महाभारत में वर्णन है, धौम ऋषि कहते हैं पाप विमोचन के विषय में कि जब व्यक्ति से पाप हो जाए तो जैसा पाप है उस तरह के प्रायश्चित करना चाहिए, घूम घूम के। उसमें बतलाए हैं कि अगम्या स्त्री से संभोग हो जाए, जो गमन करने लायक नहीं है उससे भी अगर संभोग हो जाए तो उसके पाप के भी मार्जन, अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से बध हो जाए उसका भी, तीर्थों में भ्रमण करने से पैदल चलने से वो पाप समाप्त हो जाता है। भारत के पवित्र तीर्थों में पैदल चल चल के भ्रमण करने से, स्नान करने से, दर्शन करने से, आचमन करने से पाप समाप्त हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने से तो साफ यहाँ प्रभुपाद जी लिखे ही हैं कि ब्रह्म हत्या तक मिट जाती है। हाँ, तुलसी के परिक्रमा करने से, गाय के परिक्रमा करने से ये सब पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुलसी के परिक्रमा करने और भगवान के नाम की परिक्रमा जप करने और भगवान की परिक्रमा की तरफ हम अभी इधर नहीं आएंगे। यज्ञ ये सब कर्म तक आते हैं, तुलसी की सेवा करना, भगवान की सेवा करना ये कर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। वैदिक कर्मकांड में सोमयाजी, वाजपेय, अश्वमेध, राजसूय ये सब कर्म के अंतर्गत आते हैं, सात्विक कर्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ज्यों ही भगवान से संबंधित करेंगे कर्म से अलग हो जाएंगे। नाम जप करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, आरती पूजा करना, फूल माना ये अलौकिक हो जाएगा, ये लौकिक है ही नहीं। और गुण के अंदर जो है वो लौकिक है, वो सत्वगुण हो, तमोगुण हो, रजोगुण हो, कोई भी हो, तो अभी हम कर्म की तरफ हैं। इससे भी, इस कर्म से भी व्यक्ति पवित्र होता है। कृष्ण नारायण चंद्रायण व्रत आदि करने से भी पाप खत्म हो जाते हैं। सोमयादि यज्ञ करने से भी खत्म हो जाते हैं, वाजपेय जप करने से भी खत्म हो जाते हैं, और सबका विधि अलग अलग है। सोमयादि यज्ञ करने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन इन सबसे बढ़े चढ़े अश्वमेध यज्ञ हैं। इस अश्वमेध यज्ञ को भी महाराज युधिष्ठिर ने किया, फिर भी अफसोस कर रहे हैं, वो तो किए हैं, और इसे ब्रह्म हत्या का पाप भी खत्म हो जाता है, फिर भी वो शोक कर रहे हैं। क्या महाराज युधिष्ठिर को समझ में नहीं आता था? क्या इसी तरह धर्म के अवतार हैं, धर्म के स्वरूप हैं, धर्म के पुत्र हैं, धर्म रूप ही हैं? समझते थे। यहां कह रहे हैं गृह मेधी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कार्य करना, और ऐसे कार्यों को करने में बहुत सारे अवांछित काम हो जाते हैं। अवांछित माने जिसको हम नहीं चाहते हैं, अनिच्छित कर्म हो जाते हैं, उनका पाप लगता है। और यहां तो जानबूझकर किया गया है तो हम पर लगेगा ही ना, सिद्ध हुआ। कर्म के फल दो होते हैं, यहां कर्म भी गृह में धियई नाहम कल्पो विपोहितुम, हम इन संसारिक किसी भी कर्मों के करने से इन सारे पापों से मुक्त होने में समर्थ नहीं है। कर्म भी गृह में धी यही ही कर्म भी ही स्त्री नाम हत बंधु नाम द्रोहो व्यपोहितुम अहम कल्प न, मैं समर्थ नहीं। इन सारे किए हुए पापों को हम संसारिक कर्मों के कर नहीं मुक्त हो सकते हैं, ऐसा मेरा सुदृढ़ निश्चय है। कर्म का फल ही है बंधन, लेकिन व्यक्ति कर्म करते समय सोचता है कि हम तो इस कर्म को संपन्न कर लेंगे तो हमको सुख मिल जाएगा, किंतु कर्म का फल ही है कि कर्म जैसे ही करेंगे वह आपको बांधेगा। वह कर्म करते हैं सुख के लिए, और कर्म का फल दो होता है, कर्मण फलद्वयम्। कर्म के दो फल क्या हैं? सुखम च दुखम च। अगर शुभ कर्म है तो वह शुभ कर्म का फल लगेगा, अगर अशुभ कर्म है तो अशुभ कर्म का फल लगेगा। लेकिन द्वयो रपि बंधनम स्यात्, उन दोनों से बंधन होगा, मुक्ति किसी से मिलने वाला नहीं है। इस बात को कहते हैं विदुर जी भी कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए व्यक्ति कर्म करता है। किसके लिए कर्म करता है? सुख के लिए, आनंद के लिए, उपभोग के लिए, मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु करता है। किंतु नीचे वाले पंक्ति में कहते हैं विदुर जी, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्य दुपार ममुआ, उससे सुख नहीं मिलता, नतैः सुखम तैः न सुखम, उस कर्मों से, उन कर्मों के फलों से, उन कर्मों के संपादन से नतैः सुखम। ये तीसरे स्कंध के पांचवें अध्याय के दूसरा नंबर का श्लोक है। नतैः सुखम, उन कर्मों से सुख नहीं मिलता है कर्मकर्ता को। नतैः सुखमवान नदुपार मऊआ, उस कर्मों के संपादन करने से कर्ता को, जीव को सुख मिलता नहीं है। अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, कोई जो जैसा है वैसा कर्म करता है, कोई एक फैक्ट्री खोलता है, कोई दो फैक्ट्री खोलता है, दो नहीं चलते तीसरी खोल देता है, तीसरी नहीं चलती चौथी खोल देता है, अथवा चौथी चल गई, एक दो तीन चौथी भी चल गई, चारों चल गई तो पांचवी खोल देता है, फिर भी उसको सुख, क्योंकि अज्ञा बैताल की जो कामना है वो बढ़ती जाती है, वो कभी शांत नहीं होती है। क्या घी के फूही डालने से अग्नि में कभी अग्नि कुंड शांत हो सकता है? क्या संभव है? नहीं है। तो उसी तरह नतैः सुखम, उन कर्मों से सुख नहीं होता है, और नतैः सुखम वान यदुपार ममुआ, और न उन कर्मों से व्यक्ति उपरम होता है। उन कर्मों से पुनः उपराम नहीं होता है, कर्म का यह स्वभाव है, वह छोड़ता ही नहीं है, इतना कस कर पकड़ता है, इतना जबरदस्त पकड़ता है कि फिविकोल से भी ज्यादा समझिए, फिविकोल क्या उसको कहते हैं, वही कहते हैं ना, फिविकोल से भी ज्यादा मजबूत। इसको भी कोई केमिकल डाल के हो सकता है कि छोड़ाया जा सकता है, अलकतरा सड़ जाता है तो मिट्टी के तेल डाल दीजिए तो छूट जाता है, गोबर लगाकर धो दीजिए गाय का तो सूख छूट जाता है, लेकिन यह कर्म की ऐसी जकड़ता है, मजबूती है कि व्यक्ति वहां से निकल ही नहीं पाता है, इतना वो मजबूत है। तो न कई सुखमवान दुपार ममवा, उससे उपरम नहीं होता है। अगर पांचवी फैक्ट्री खोली तो छठवीं भी खोलेगा, अगर यहाँ महल बन गया तो वहां भी बनना चाहिए, अगर वापी में है तो सूरत में होना चाहिए, इधर क्या है, सिलवासा, मुंबई और दमन, अब इसी तरह बढ़ते जाइए, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता, अमेरिका, लंदन, अरे भैया सारे जगह पहुंचना चाहिए, तमाम जगह। अगर चले तो यहाँ से नहीं, वो चंद्रलोक में भी पैसा जमा करते हैं कि वहां भी रहना चाहिए, फ्लैट हमारे नाम से। क्या उपशमन हुआ? एक कर्म की प्रक्रिया है, कभी शांत हो ही नहीं सकता, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चलता रहे। वहीं तक नहीं, हम लोगों के पास भी वही दशा है, इन गृहस्थियों की बात तो छोड़ दीजिए, है अगर 10 रुपए दक्षिणा मिला तब सोचते हैं कि 20 रुपए हो जाना चाहिए, अगर 500 दक्षिणा मिल गया तो सोचते हैं कि 1000 हो जाना चाहिए,
हैं। सोचने की प्रक्रिया कभी समाप्त होती है क्या? कर्म करने की प्रक्रिया कभी बंद होती है क्या? बिना कर्म किए व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं क्षणमेकं न तिष्ठति, एक क्षण भी कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। उसकी अशांति बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। कर्म की यही प्रवृत्ति है, कर्म का यही स्वरूप है कि वह सुख के लिए करता रहता है। कोई चोरी करता है, कोई अपहरण करता है, कोई बलात्कार करता है, कोई डकैती करता है, कोई अपहरण करता है। क्यों? सोचता है कि इस कर्म को हम कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे और हम आनंदित हो जाएंगे। लेकिन कर्म करने के बाद फल क्या होता है? दुख। जैसे कर्म के स्वरूप को दिखाते हैं, कोई व्यक्ति चोर है तो सोचता है कि हम इसके पास शुद्ध सेवक प्रभु के पास 5 लाख रुपए हैं, इसको चुरा लेंगे, आराम से बैठ के कई सालों तक खाएंगे। और चुराने गया तब तक से पकड़ में आ गया और जेल में चला गया। 5 लाख तो मिले नहीं, पकड़ के गया जेल में, मार पड़ी और कई साल तक भोगना पड़ा। जेल में गया, तो चोरी तो किया भोग भोगने के लिए, सुख के लिए, लेकिन मिला का परिणाम सुख दुख। अच्छा, दुख मिला, हम समझे कि सुख मिला, दुख मिला। अच्छा, कोई व्यक्ति बलात्कार करके सोचता है कि वो बड़ी सुंदर महिला है, बड़ी सुंदर स्त्री है, मैं उसका उपभोग कर लें, लेकिन पकड़ में आ गया, जेल में गया, मारा गया, आजीवन कारावास या फांसी दे दिया गया। संजय बनर्जी का सुने थे ना, फांसी हुआ था, 13 वर्ष के नवाली के साथ बलात्कार किया था, फांसी हुआ, उसको सुख के लिए किया। मासूम कोमल ज्योति के साथ जब हम भोग करेंगे तो हमको ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा सुख मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा किया। लेकिन जब केस हुआ, कई साल तक केस चला, अंत में फांसी हुई। आप लोगों को नहीं पता है, मुझे पता है, मैं उस समय वृंदावन पढ़ा था, अखबार में लिख रहा हुआ था। तो व्यक्ति ऐसा क्यों किया? सुख के लिए। लेकिन परिणाम क्या निकला कि ज्ञाते भी उसे जलाने के लिए नहीं आए, फांसी दिया गया, फेंक दिया गया, सुख नहीं मिला। चोरी चोर किया, चोर चोरी किया, सुख नहीं मिला, नहीं मिला। बलात्कारी बलात्कार किया, सुख नहीं मिला। एक से एक अपहरण करता है, एक से एक आतंकवादी है, किस लिए करते हैं? अपने सुख के लिए। लेकिन उन लोगों को भी सुख नहीं मिलता है, चोर और बदमाश गुंडे लोगों को भी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि उनको ज्यादा बेचैनी रहती है। जो दूसरे को राइफल और बंदूक लेकर सताने के लिए चलते हैं, वो ज्यादा सशंकित रहते हैं, जंगल में रहते हैं, घर में नहीं रहना पड़ता है, जंगल में रहना पड़ता है, पेड़ के नीचे रहना पड़ता है, जब बारिश होती है तो भींगना पड़ता है, सहना पड़ता है। लेकिन किस लिए वो करते हैं? सोचते हैं कि हम दूसरे को मार देंगे, दूसरे को धन को ले लेंगे, दूसरे को सता देंगे तो सुखी हो जाएंगे, किंतु सुख मिलता नहीं है। मैंने आंख से देखा है कि वो बदमाश कितने परेशान जंगल में रहते हैं। मैं हरिनाम प्रचार करते समय आंख से देखा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं गप कर रहा हूँ, एकदम आंख से 13, 14, 15, 20 लाइन के लाइन रहते हैं, कभी कभी 50-60 मिल जाते थे। महाराज जी के काल में तो बहुत मिलते थे, हमारे गुरु महाराज के काल में, भैया गौर कृष्ण जी के काल में, पूछेंगे तो सब बतला देंगे। उन लोगों में घूम घूम के प्रचार किए हैं, तो वो सब दुख भोगते हैं और सो नहीं पाते हैं। रात्रि में अगर कहीं जंगल के पत्ती खरखरा गई, आवाज आ गई, तो कहीं पुलिस आ गई, वहां से तुरंत भागते हैं कि पुलिस आ गई। तो बताइए, उनको सुख है? चैन से सो भी नहीं सकते हैं। दूसरे को जो सोने नहीं देता, वो कैसे चैन से सो सकता है? तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर ईमानदारी से भी कर्म कीजिए तो भी सुख मिलने वाला नहीं है, कर्म के बंधन। अगर बेईमानी से भी कर्म कीजिए तभी आपको चैन से नहीं रहने देगा, दुख मिलेगा, दुष्कर्म रूप कर्म फल आपको सताएगा। यह है कर्म की प्रक्रिया। तो यह है नतई सुखमुआ न दुपार ममुआ बिंदेत भूय पुनएव दुख। पुनः उन कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख ही मिलता है। चोरी किया, जेल में गया, बलात्कार किया, मर्डर हुआ, फांसी हुई, चोरी बदमाशी गुंडई करके सोचते हैं कि हम सता करेंगे और जंगल में रहते हैं, दुख भोगते हैं, क्या उन कर्मों से सुख मिला किसी को? अच्छा अच्छा जो अपने को कर्म कहते हैं करने को, यज्ञ तप दान आदि करते हैं, स्वर्ग तक जाते हैं, सत्कर्म करके स्वर्ग तक जाते हैं और वहाँ बड़ा सुंदर पुण्य का उपभोग करते हैं। लेकिन जब पुण्य क्षय हो जाता है तो पुनः मर्त्यलोक में आते हैं। गीता मर्त्यलोक में पुनः आते हैं कि नहीं आते हैं? भुक्त्वा तेतम स्वर्गलोकम पुण्य छिड़े मर्त्यलोकम विसन्ति, आते हैं कि नहीं आते हैं? तो पूर्ण क्षीण होने के बाद में उस कर्म का भी बंधन मिला, जन्म और मृत्यु, और पाप कर्म करने के बाद में भी उसका फल मिला, जन्म और, तो श्रृंखला बंद हो गई कि चल ही रही है? तो वही महाराज कह रहे हैं कि युद्ध में तो भाई भतीजे बेटा बंधु सब आते हैं, स्त्रियों के भी आते हैं, हम योद्धाओं के भी आते हैं, और सब मारे जाते हैं। तो एक कर्म के बाद दूसरा कर्म की प्रक्रिया जब जारी ही है तो हम तो कर्म बंधन में ही पड़े हुए हैं ना। इन सैकड़ों पुण्य कर्मों को करने से, सैकड़ों यज्ञों के करने से हम मुक्त होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं, इसमें सुई के नोक के बराबर भी महाराज झूठ नहीं बोल रहे हैं, सुई के नोक के बराबर भी गलत नहीं बोल रहे हैं, ना ये गलत सोच रहे हैं। नरक में जाना ही पड़ेगा क्योंकि शास्त्र कहता है। इसीलिए विदुर जी नीचे वाले पंक्ति में कहते हैं जिसको हम छोड़ रहे हैं, जदत प्रजुक्तम भगवान बदे न। मैत्रेय जी से कहते हैं कि हे भगवान, इस विषय में जो हमारे लिए युक्त है वह आप बतलाइए कि मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सी क्रिया संपन्न करनी चाहिए जिससे कि सारे जीवों को और हमको भी सुख मिल सके, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं और कर्म बंधन में न जाना पड़े। तो इसका उत्तर देंगे आगे, लेकिन हमको उधर नहीं जाना है। कर्म का बंधन है, कर्म का फल है कि वह निश्चित रूप से दुख ही देता है, बार बार प्रेरित करता है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि कर्म वैसे ही व्यक्ति को पीछा करता है जैसे उसकी परछाई। जो कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म करने वाले व्यक्ति के कर्म फल वैसे ही पीछा करता है जैसे परछाई उसके पीछे पीछे चलता रहता है, प्रतिबिंब। आप चलिए, प्रतिबिंब आपके पीछे चलेगा। आप उसको मना करते रहिए, हटाते रहिए, तलवार से काटते रहिए, लेकिन पीछा छोड़ने वाला नहीं है कि है नहीं, उसके पीछे जाएगा ही। जैसे सहस्त्रों गायों में, सहस्त्रों धेनुओं में बछड़ा को छोड़ दिया जाए तो बछड़ा अपने माँ के प्रति ही जाता है, उसी तरह कर्म करने वाले व्यक्ति को किए हुए कर्म का फल उसी के साथ जाता है। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा कृत कर्म फलम कर्तारं प्रति गच्छति। नीति का श्लोक है। सहस्त्रों सहस्त्रों धेनुओं के बीच भी बछड़े को छोड़ दिया जाए तो बछड़े अपने माँ के थन में जाकर ही पिएगा, दूसरे के थन में नहीं पीता है। और पीना चाहे भी तो पीने नहीं दिया जाएगा। उसी तरह तथा कृत कर्म फलम, उसी तरह कर्ता के किए हुए कर्म फल उसके अनुगमन करते हैं, उसमें कोई विचार नहीं करते हैं, निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। महाभारत में भी कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभ कर्म, जो हम कर्म किए हैं वो निश्चित रूप से भोगना ही चाहिए और भोगने योग्य है, भोगना ही पड़ेगा, वो किसी के मिटाने से मिटने वाला नहीं है। वो शुभ है तो अकेले भोगेंगे, अशुभ है तो भोगेंगे। और भागवत के एकादश स्कंध में भी कहा गया कि स्वकृत भुक्कुमान, जो व्यक्ति करता है वही भोगता है। जब आप धान के खेती करेंगे तो धान काटेंगे, गेहूं के खेती करेंगे तो गेहूं काटेंगे, और गेहूं में भी कई प्रकार हैं, कोई 364 हैं तो कोई 556 हैं, गेहूं के नाम होते हैं कि नहीं। तो जो जो आप गेहूं बोएंगे वही गेहूं काटेंगे ना, 364 ही काटेंगे ना। जब 364 बोए हैं तो 364 काटते समय काटेंगे ना कि 556 भी काट लेंगे, नहीं काट पाएंगे। धान में भी मंसूरी धान होता है, नाटी मंसूरी होता है, सोनाचूर होता है, बासमती होता है, न जाने कितने प्रकार के धान होते हैं। तो जो जो धान के पौध लगाएंगे वही धान ना आप काटेंगे कि क्या काटते समय आप सोनाचूर काटेंगे, बासमती काटेंगे, जो 120 रुपए किलो मिलते हैं वो नहीं तो काटने चले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम शुभाशुभ कर्म और स्वकृत भुक्तम, जो किए हैं वही भोगेंगे, वो दूसरा नहीं। बिल्कुल आज सिद्धांत है, वो भोगना है, टरने वाला नहीं है। इसी बात को अक्रूर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। समय आज कम पड़ जाएगा। अच्छा तो कोई बात नहीं, अपनी बात है, घर की बात है। अक्रूर जी महाराज गए धृतराष्ट्र के पास, जब भगवान कहे कि चाचा जी आप थोड़ा जाइए हस्तिनापुर, पता लगाइए कि पांडवों के प्रति महाराज धृतराष्ट्र कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो वहां गए, सबसे मिले, समाचार लिए और पता चला कि पांडवों के प्रति तो इनका दुर्व्यवहार है। अपने पुत्रों के अनुराग में फंस कर पांडवों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, विषमता कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी सुंदर समझाया, बड़ी सुंदर बात समझाई उन्होंने और कहा कि महाराज जिस पुत्र के लिए, जिन पुत्रों के लिए, जिन ज्ञातियों के लिए, जिन संबंधियों के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको अकेले भोगना पड़ेगा। ये मत समझिए कि आपके ये पुत्र भी भोगेंगे, आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा, आप अकेले ही नरक में जाएंगे। तो वहां कहते हैं कि जीव अपने अच्छे कर्म का फल अकेले भोगता है और अच्छे कर्म का फल बुरे कर्म का फल भी अकेले ही भोगता है। तो आप ऐसा कर्म क्यों कर रहे हैं, बहुत सुंदर समझाएं। एक प्रसूयते जंतु एक एव प्रलीयते, एको न भुक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। उन दसम स्कंध के 49वें अध्याय में शायद 21 या 22 जो हो, संख्या तो मुझे नहीं पता है, हाँ 21 ही है, 21 नंबर का श्लोक है। कहते हैं कि जीव अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही मरता है और अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अकेले ही भोगता है। तो फिर जब अकेले ही भोगना है तो आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी विषमता मत कीजिए महाराज। मिला 50 में एक कम, 50 में एक कम, 49, 49 उसको बोलते हैं। मिला एक प्रसूयते जंतु एक एव प्रलीयते, एको न भुक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। अपने कर्म का अकेले ही आपको परिणाम मिलेगा, फल भोगना पड़ेगा। आप तो देखते हैं ना कि जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मरता है, अकेले अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। अच्छा किया है तो अच्छा और बुरा किया है तो बुरा। तो फिर आप इस रहस्य को जानते हुए समझते हुए क्यों ऐसा विषमता करके ग्रहित नर्क में जाने के लिए द्वार खोल रहे हैं, समझ जाइए। ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन वो समझा उझा नहीं। बड़ा सुंदर सिद्धांत बोला है नीचे कि वो तो भगवान है, अवतार लिए हैं पृथ्वी के भार हरण करने के लिए, जदोकुले अवतीर्ण भगवान, वो भगवान कहा है। जदुकुल में साक्षात भगवान भूमि भारावताराय, भूमि के भार को उतारने के लिए। तो जो चाहते हैं वही होगा, उनके किए हुए विधान को कोई मिटा नहीं सकता है। न विधनोति भगवत, विधि कोई अपलाप नहीं कर सकता है। तो जो होने वाला है होगा महाराज। इसलिए आपकी बात तो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे। फूटे हुए घड़ा में अमृत के समान आपके उपदेश ठीक नहीं रहे हैं। सौदामनी पर बिजली के समान आपके ज्ञान तो चमकता है, लेकिन कितना देर बिजली चमक कर टिकती है, समाप्त हो जाती है। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, उपदेश बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे फूटे हुए हृदय में पुत्र के ममता में हमारा जो विषमता के हृदय हो गया है, फूट गया है, समता से निकल चुका है, इसलिए आपका ज्ञान मेरे हृदय में टिक नहीं रहा, छू जा रहा है, निसरित हो जा रहा है। तो वही महाराज अक्रूर जी कह रहे हैं कि कर्म का फल अकेले भोगना पड़ेगा, इसीलिए संभल कर रहना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है, वह छोटा हो तो छोटा और बड़ा हो तो बड़ा। क्योंकि ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं कि अगर एक होता है गोपेंद्र, इंद्र गोप कहते हैं, एक कीट है ब्रह्म संहिता के शायद 49वें या 54वें नंबर के श्लोक में है, देख लीजिएगा, ब्रह्म संहिता में है 54 नंबर का शायद श्लोक होगा। यस्त्वेंद्र गोप मथवेंद्र महोस्व कर्म बंधान रूप फल, बंधान रूप फल भाजनमा तनोति। नीचे वाले नहीं बोलना है, हमको जितना चाहिए उतना बोलना है। स्व कर्म फलानु अनुरूप ही फल भाजनम आतनोति। यस्तु इंद्र गोप है ना, जो छोटा सा बड़ा छोटा सा कीट है, और वह इंद्र गोप हो अथवा इंद्र जैसा व्यक्ति महान, आने छोटा से लेकर बड़ा व्यक्ति तक अगर कर्म करता है तो उसका फल भोगना पड़ता है। यस्त्रिंद्र गोप मथवेंद्र महोस्व कर्म बंधान रूप फल भाजनमा तनोति। वह अपने कर्म के अनुसार फल का उपभोग करता है। आप देखे होंगे छोटे छोटे बरसात में कीड़े होते हैं जो कि ऐसे ऐसे चलते हैं, और एक कीड़े के ऊपर भी दूसरा कीड़ा चढ़ा रहता है और वो ढोता रहता है, उसको इंद्र गोप कहते हैं बरसाती। और सैकड़ों होते हैं, पैर रख देंगे तो सैकड़ों आ जाएंगे पैर के नीचे, इतने छोटे छोटे होते हैं, लाल लाल होते हैं, और वो बरसात में ही होते हैं ज्यादातर, बरसाती कीड़े हैं। तो अगर वो भी पाप करते हैं तो उनको भी पाप का कर्म करते हैं, पाप कर्म, तो उनको भी पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। और इंद्र जैसा समर्थशाली व्यक्ति भी पाप करता है तो उसको भी अपने कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। उदाहरण है कि नहीं, यहां ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं क्या? उसी अनुपात में लगता है, आप वाला नियम थोड़े वहां लगता है। हाँ हाँ जी, उसी के अनुपात में। वहां जहाज वाला नियम थोड़े रेल पर लग जाएगा, रेल वाला नियम थोड़े जहाज पर लग जाएगा, मनुष्य वाला नियम थोड़े पशु पर लग जाएगा, पशु वाला पशु पर लगेगा। यद्यपि खाने का ही नियम बनाया गया है, जीव जीवस से भोजनम कहा गया है, लेकिन आपको भोजन बनाने के लिए कहा गया है, खाने के लिए गया, उस समय भी आपसे पाप होता है, उसका भी पाप लगता है। समझे, बड़ी कर्म की गति बारीक है, बहुत बारीक है। इसीलिए मैं कहा कि आज की कथा जो है वो ऊपर ऊपर जाएगा, छाका के तरह बाउंड्री पार करते जाएगा, और कभी कभी तो सीधे सिक्सर हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि यस्पिंद्र गोप मथवेन्द्र महोस्व कर्म कर्म फला स्वकर्म बंधान रूप फलभाजनम आतनोति, अपने अपने कर्म के अनुसार फलभाजनम आतनोति, कर्म फल को प्राप्त करते हैं, फलभाजनम आतनोति माने प्राप्त करते हैं। यह निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। इंद्र भी विश्वरूप जी का वध किया तो भोगना पड़ा कि नहीं? विश्वरूप जी का वध किया अपने गुरु का तो चार एक वर्ष भोगा, और इसके बाद में उस ब्रह्म हत्या को चार जगह बांट दिया, स्त्रियों में, पृथ्वी में, वृक्षों में और जल में बांट दिया। इसके बाद में तब उसकी प्राश्चित हुई, जब पुनः रोड पर आ गया, छाती ऐंठ कर चलने लगा तो अष्टा जी को नहीं रहा गया। फिर उन्होंने वृत्रासुर को उत्पन्न किया, एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें पुत्र के रूप में वृत्रासुर उत्पन्न हुआ, उसके साथ युद्ध हुआ, फिर वो मारा गया, ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगी कि नहीं लगी? 1000 वर्षों तक बिना खाए पिए तड़पता रहा, जल में रहा, लक्ष्मी जी के आश्रय लिया, कमल डंठल में छिपा रहा, लक्ष्मी जी उसी कमल डंठल के हिसाब सहारे उनको भोजन पानी देती रही। तो कर्म फल भोगना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभ कर्म भोगना पड़ता है। तभी तो सूरदास जी कहते हैं कर्म गति तारे नाही तरे, कर्म गति तारे नाही तरे। कर्म की ऐसी गति है कि कोई चाहे कि उसको हम किरान लगा के धकेल दे पीछे चला जाएगा, संभव नहीं है। पीछे नहीं जाने वाला है, वो सामने आएगा ही, वो शुभ कर्म फल के रूप में आवे या चाहे अशुभ कर्म फल के रूप में आवे, वो आना सुनिश्चित है। आज नहीं तो निश्चित, जैसा जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर, वो जैसा करेंगे वैसा फल तो निश्चित आने वाला है। लोकोक्ति में कहा गया है आज आ जाए आ चाहे कल आ जाए, वो निश्चित रूप से मिलेगा। और गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है बड़ी बारीक है, उसको समझना बड़ा कठिन होता है। भगवान श्री हरि ने 4वें अध्याय के 17वें नंबर के अध्याय में श्लोक में कहा है कि गहना कर्मणो गति, गहन है, बड़ा सघन है, बड़ा जटिल है, बड़ा बारीक है, बड़ा सूक्ष्म है, समझ पाना कठिन होता है। घबराइएगा मत, सबका समाधान भी है, अभी तो केवल इसके जटिलता के तरफ है, लेकिन समाधान भी है। ऐसा नहीं कि संसार में कोई समाधान नहीं है, जहां हमारे जगन्नाथ जी हैं तो फिर क्या असंभव है? घबराइएगा मत, आना है हमको समाधान पर, लेकिन अभी चल रहे हैं जटिलता पर। भगवान ने ऐसा कहा कि कर्म की गति बड़ा गंभीर है, बड़ा जटिल है, सब लोग करते हैं सुख के लिए, लेकिन सुख मिलता नहीं है। एक बार इसी तरह निषाद राज जंगल में जब गए थे, राम जी और लक्ष्मण जी, तो निषाद राज लक्ष्मण जी से कहते हैं, नहीं लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, जब भगवान चले गए जंगल में सीता जी भी चली गई साथ में, श्री लखनलाल जी भी साथ में चले गए। तो इनके सौंदर्य माधुर्य कोमलता मृदुता आदि को देखकर निषाद राज उनके माता पिता को भी बोलने लगे कुछ। तो वहाँ समझाए लखनलाल जी इसमें किसी का दोष नहीं है, प्रत्येक जीव अपने सुख और दुख का उपभोग करता है और उसमें उसी का किया हुआ कर्म फल निहित है। यद्यपि भगवान पर कर्म बंधन का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उन्होंने समझाया ऐसा ही है। निषाद राज को समझाते हुए कहते हैं इन संसारिक जीवों के लिए, काहु न काहु के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई निषाद राज, आप खेद मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, हमारे माता श्री पर और हमारे पिता श्री पर आप दोषारोपण मत कीजिए। इसमें तो हमारा ही कुछ ऐसा कर्म होगा जो हमें जंगल में लाया है, हम अपने ही किए हुए कर्मों का उपभोग कर रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं। क्या हमारे प्रभु पर भी कर्म का फल लगता है? कदापि नहीं, क्योंकि गीता जी कहते हैं कि दिव्य जन्म कर्म से मैं दिव्य, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, अतर्क है, अचिंत है, अकाट है। ये नहीं कि कोई ननुचक किंतु परंतु करके ऐसे तैसे करके सिद्ध कर देगा, उसको अपलाप कर देगा। दिव्य है, अलौकिक है, संसारिक है ही नहीं। और उस प्रभु के मुखारविंद से भी ऐसा निकल रहा है, केवल ये संसारिक जीवों के लिए, उनके लिए नहीं, ये समझना चाहिए। लेकिन जो जीव कर्म के अंतर्गत हैं, गुण के अंतर्गत हैं, उन सब पर यह लागू है, यही बात कह रहे हैं निषाद राज जी। किंतु इतनी बारीकता होने के बाद में भी इससे भी छूटने का कोई उपाय है क्या? तो कहते हैं कि हाँ है। प्रभुपाद जी गीता के 27वें नंबर के और 28वें नंबर के श्लोक में कहे हैं कि इन सारे कर्मों के करने से जो कर्म फल बनते हैं, कर्म फल, इन कर्म फलों को जब लगा दिया जाए, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें और 28वें अध्याय में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव कर्म करता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है और बिना किए रह भी नहीं सकता है। लेकिन उन कर्मों का फल यदि भगवत अर्पण कर दिया जाए तो सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो करता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कुछ त्याग न करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कुछ देता न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खाता न हो। यत करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पण, 27वें नंबर के श्लोक में। ऐसा कर्म करते हैं ना, तीन कर्मों के करने से जो फल बनता है वो शुभ और अशुभ, उस सब को, उन सारे को भगवत अर्पण कर दीजिए। भगवान साफ कह रहे हैं कि मुझे अर्पण कर दो, मुझे अर्पण करो। मुझे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान ही भागवत है और भगवान ही भगवत धर्म है। तो भागवत धर्म के निरूपण में भी भगवान यही बात कहते हैं कि इन कर्मों के करने से मैं प्राप्त होता हूं, भगवत धर्म हो जाता है। जब भगवान को व्यक्ति अर्पण कर देता है तो वह भगवत धर्म होता है। जैसे भोजन किए, भोजन बना रहे हैं, भगवान को अर्पण कर दिए, इसके बाद खाए, भगवत अर्पण हो गया, भगवत प्रसाद हो गया। वस्त्र ले आए, वस्त्र को भगवान को अर्पण कर दिए, इसके बाद पहन दिए, भगवत कर्म हो गया। जूता लाए, चप्पल लाए, गंजी लाए, डाणा लाए, जनेऊ लाए, कंठी लाए, माला लाए, जो कुछ लाए सब भगवान को अर्पण करके तब पहनना चाहिए। चप्पल जूता वो पैर में नहीं पहनते हैं, भगवान को चढ़ा देंगे, भगवान को दिखा देंगे, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, भगवान के सामने, भगवान के सामने प्रभु आपका है, प्रभु आपका है, आप इसको स्वीकार कीजिए, भाव ग्राही जनार्दन। हाँ, अर्पण करके पहन सकते हैं, जो कुछ है आपका है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पय, सब कुछ के भोक्ता भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर का मतलब चप्पल बाहर हो जाएगा क्या इसमें? अरे भैया, भगवान खराब नहीं बनते क्या, विचार कीजिए। अरे अपने मुख में भाव, भोजन खा के मन बना सकते हो, प्रसाद खा के बना सकते हो, और चप्पल नहीं बन सकते हो, वस्त्र नहीं बन सकते हो, जनेऊ नहीं पहनते हो क्या एकदम? और काट है या तर्क है, मैं अपने गुरु महाराज से सुना हूँ, एकदम कर सकते हैं, पहन सकते हैं। भगवान को अर्पण किया हुआ पहन, भगवान के अर्पण किया हुआ माला पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, सब पहन सकते हैं। इसलिए वो सब भगवत कर्म हो जाएगा। जो कुछ अपने भाई बंधु इष्ट मित्र दोस्त ज्ञाति देते हैं, सब देने से पहले ठाकुर को अर्पण कीजिए, इसके बाद में दो भगवत प्रसाद। यही भागवत धर्म है, यह भागवत धर्म हो गया। तभी तो कहते हैं कि ये वही उपाय, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय ह्यात्म लब्धय अंजह पुंसाम विदुषाम विधि भागवतान्विता। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। जो भगवान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए उपाय बतलाया गया है, वही भागवत धर्म है। या न स्थाय नरो राजन न खले न पते दिह, जिस मार्ग पर चलकर जिस यान पर बैठकर व्यक्ति धावन निमिल्यवान नेत्रे न खले न पते दिह, आंख मुद कर दौड़ सकता है, न उस पर गिरने का भय है और न फिसलने का भय है, कोई कहीं टक्कर का संभावना ही नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द आता है ना एक्सीडेंट, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट नहीं होने का भय है, नो चांस, अंधाधुन चलते जाइए, कहीं धाका लगने वाले, वो स्टेयरिंग छोड़कर चलाइए, क्लच ब्रेक छोड़कर चलाइए, चलता रहेगा, वो धाका लगने वाली नहीं, कितना हो स्पीड में चलिए, अनलिमिटेड। यहाँ तो चार गियर पांच गियर तक होता है ना, वो वहां किसी गियर में चलिए, वहां 64 गियर है भक्ति के, है कि नहीं? तो ये है भागवत धर्म। और यह कैसा हूं भी किए जा सकते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, स्वभाव से, जिसका जैसा है वैसा, बुद्धि से, सब तरह से। कवि जी बोल रहे हैं, देखिए एकादश स्कंध के दूसरे अध्याय के 34, 35, 36 तीन श्लोकों में है, जिसको मैं दो को बोल दिया है, मैं बोल रहा हूँ 36वां। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावा यद् यद् करोति सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये है 36वां नंबर का श्लोक, यही है ना? तो 34, 35, 36 इन तीनों को हम लिए हैं। ये भागवत धर्म है, और भाग ऊपर भागवत धर्म बतला दिए, और उसको कैसे संपन्न करेंगे भागवत धर्म को, तो 36वां नंबर के श्लोक से बतला रहे हैं कि हम कैसे यद करोसि यदस्नासि यद्जिहोसि ददासि यद् यद् तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्व मदर्पणम्, उसको कैसे मत अर्पण किया जा सकता है, उपाय बतला रहे हैं कवि जी। कायेन, शरीर से, शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। कायेन वाचा, वाणी से भगवान को अभी बोल रहे हैं, वाणी से भगवान की सेवा कर रहे हैं। कायेन, काय से हम प्रणाम करते हैं, काय में तो सब आ जाएंगे, पूरा शरीर आ जाएगा काय में, पूरा शरीर हो गया काय। और वाचा माने वाणी से, कायेन वाचा मनसा मन से, हम वाणी से भगवान के गुण गा सकते हैं, मन से भगवान के लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। कायेन वाचा मनसा, इंद्रियों से, अलग अलग इंद्रियां हैं, आंख से भगवान के दर्शन करके कर सकते हैं, हाथ से भगवान के फूल की माला पिरो कर या फूल तोड़ कर हम कर सकते हैं। इंद्रिय अलग अलग इंद्रिय हैं, नासिका से भी भगवान की सेवा, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी या पुष्प का हम ग्रहण करते हैं कि नहीं? रोक ये सेवा है। अब उधर हम नहीं जाएंगे महाराज अम्बरीश के तरफ, सवाई मनोह कृष्ण के तरफ, क्योंकि बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा, टाइम इसी तरह उभर कर रहा है। तो ये सब भक्ति हो जाएंगे, सब भगवत धर्म हो जाएंगे। जिह्वा से भगवान के प्रसाद खा के, उनके नाम के गाकर हैं, ये सब के सब काये नवाचा मन से इंद्रिय इंद्रियों से हुआ। काये नवाचा मन से इंद्रिय इर्वा बुद्ध्यात मनावा, बुद्धि से, विशेष बुद्धि किसी किसी के पास होती है, इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिक वैज्ञानिक उस बुद्धि से भी अगर उस बुद्धि को भी इधर लगा दें, अथवा अपनी मोटी बुद्धि ही हो, सिद्धम साठ गांव के ही रहने वाले हो, जिसकी जैसी बुद्धि उस बुद्धि से भी अनुसृत स्वभाव, जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है वो अच्छा हो या बुरा हो, उस संस्कार बस, अथवा अहंकार बस कि मैं कृष्ण का दास हूं, इन सारे चीजों से जो कुछ किया जाता है सब भगवान अर्पण कर दे। अहंकार से भी भजन होता है। एक बार हमारे महाराज जी के पास एक शिष्य आया, महाराज जी का हमारा गुरु भाई, तो महाराज जी पूछे, एक व्यक्ति पूछा कि अहंकार से कैसे भजन होगा, तो महाराज जी यही उदाहरण दिए थे, श्याम सुंदर जी उदाहरण दिए थे। महाराज जी पूछे कि ये बतलाइए कि भजन हो रहा है, मधुसूदन दास थे या कोई हमारे गुरु भाई थे? क्योंकि हाँ महाराज जी, भजन चाप कर होता है, चाप कर होता है, चाप माने भोजपुरी का शब्द है, माने खूब बढ़िया से भजन हो रहा है, पूर्ण रूप से भजन हो रहा है। और चाप का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को पकड़ के ऐसे खींच देना, दबा देना, उसको चापना कहते हैं भोजपुरी में, समझे? तो उसको कहा कि हाँ महाराज भजन चाप कर होता है। क्या क्या भजन होता है? सुबह 4 बजे नहा के मंगला आरती कर लेते हैं। तो महाराज जी कहाँ सुबह 4 बजे नहाकर मंगला आरती होती है? अच्छा, तो सिंगार आरती करते हैं। महाराज जी कहाँ सिंगार आरती हो पाता है टाइम से? तो 16 माला जप हो जाता है। महाराज जी तो 16 माला जप हम घर गृहस्थी में रहने वाले भी कहाँ कर पाएंगे? कभी होता है, कभी छूट जाता है। तो सब कहें कि साधु संग होता है, तो महाराज जी कहाँ जंगल में साधु संग मिलेगा? तो भोग लगा के खाते हैं, करें महाराज जी कहाँ नियमित भोग लगा कर खाने को मिलता है, जहाँ तहाँ रहना पड़ता है। तो कहे कि मंगला आरती हो ही नहीं रही है, जप हो ही नहीं रहा है, साधु संग मिला ही नहीं, श्रृंगार आरती हुई ही नहीं, तब तो आप किस माने में कहेंगे भाग भजन चाप के होता है? तो श्याम सुंदर जी कहे, महाराज जी कहे, तब तो आप भजन को ही चाप दिए हैं, भजन को ही दबा दिए हैं। तो श्याम सुंदर जी कहे कि नहीं, ये अहंकार भक्ति कर रहे हैं। काये नवाचा मनसे इंद्रियरिवा बुद्ध्यात्मनावा नुसृत स्वभावा यद्यद् करोति सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ये अहंकार है ना इनको कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो अहंकार भक्ति करते हैं। तो अहंकार से भक्ति होती है। जब भगवान श्री राम भेजे हनुमान जी को, तो वहाँ पूछा गया कि ये बंदर तुम किसके हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा यही परिचय कि दासो हम रघुनाथस्य, मैं रघुनाथ जी का दास हूँ। तो यह मानना कि हम कृष्ण के दास हैं, हम महाराज जी के शिष्य हैं, हम हरे कृष्ण वालों में जीते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में से जुड़े हुए हैं, हम प्रभुपाद जी के मिशन में हैं, तो यह भक्ति है। वो जप करे चाहे मत करे, तिलक करे चाहे मत करे, वो अगर ऐसा मान रहा है तो भक्त है, भक्ति है। प्रमाण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आश्चर्य की बात नहीं है, प्रमाण है, भागवत का प्रमाण। वो कवि जी बोल रहे हैं, 9 योगेश्वरों में से एक कवि, हरिरंतर प्रभु पलायन आदि में से एक बोल रहे हैं, कवि जी बोल रहे हैं, पहला योगेश्वर निमि महाराज के सभा में ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, और एक टीका में भी अर्थ किया गया है। तो अहंकार भी एक भक्ति है कि हम भगवान के भक्त हैं। तो इससे भी भक्ति किया जा सकता है, इसको भी भगवान के शरण में लगाया जा सकता है अहंकार को भी। और यज यद करोति, जो जो करते हैं, परस्मै परम पुरुष नारायणाय इति समर्पये, ये सब कुछ उनको समर्पण कर दिए। तो ये समझिए कि कर्म करने के पश्चात भी नीचे वाले 28वें श्लोक में गीता के लिखते हैं 27वें के बाद, यद करोषि यदस्नासि यद जुहोषि ददासि यद यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, के नीचे है 28वां, कहते हैं कि शुभा शुभ फलई रेव मुच्यते कर्म बंधन ही, कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कैसे? तो सन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैशसि, साफ है ना। तो इसको कहते हैं कि सारे कर्मों के फल जब भगवत अर्पण कर दिया जाता है तो ये सब के सब शुभ और अशुभ, ध्यान दीजिए मैं पहले कहा हूं कि कर्मण फल द्वयम, कर्म के दो ही फल होते हैं, शुभम अशुभम च, सुखम च दुखम च। तो शुभ और अशुभ दोनों फलों को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए तो फिर उसके दायित्व ये है, आप नहीं है। संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग से युक्त जो है, युक्त है, लगा हुआ है, वह व्यक्ति विमुक्त माम उपैशसि, वह मुझे प्राप्त करता है, भगवान ऐसा कहते हैं। संन्यास योग युक्त आत्मा, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं गीता के कि गुरु के निर्देशानुसार कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में युक्त होकर गुरु के निर्देशानुसार जो सेवा करता है यही संन्यास योग युक्त आत्मा है, इसी को युक्त कहा गया है। और ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से सन्यासी है और वह विमुक्त आत्मा है, विमुक्त है, और जो ऐसा विमुक्त है तो माम उपैशसि, मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम पर कोई कर्म बंधन लगेगा ही नहीं, मुझे अर्पण करो ना, तुम तो केवल कर्म करते जाओ क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है कर्म करना, लेकिन फल का भोगता मैं हूं। तो ऐसा उन्होंने समझाया, इन सारे कर्मों को बटोर सटोर तो भगवान में लगा दीजिए और सबका काम भगवान देख लेंगे, सबको ठीक कर देंगे। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बटवर जोरी। गोस्वामी जी से भगवान कहते हैं कि सबके ममताओं रूपी ताग को बटोर कर बढ़ दीजिए, सूत्री बना दीजिए और उसको मेरे चरण रूपी खूंटे में बांध दीजिए, सबका काम समाप्त। जब भगवान ही खूंटा है तब कहाँ जाएंगे? कोई भी व्यक्ति जैसे छोटे छोटे गाय भैंस बकरी देखते हैं लहास में बांध देते हैं, चरती रहती हैं, आप लोग देखे हैं कि नहीं? गाँव में गांव वाले बड़ी जल्दी समझेंगे, आप नहीं समझ रहे हैं। गाँव में क्या होता है कि बकरी समझ रहे हैं, बकरी के गले में रस्सी बांधकर एक खूंटा में बांध देते हैं और रस्सी बड़ी होती है वो चरती रहती है और उस रस्सी के अंतर्गत ही चरती रहती है, तो उसको लहास कहते हैं, वो बकरी कहीं नहीं जा सकती है, लहास के अंतर्गत रहेगी। तो सारे कर्मों को, सारे स्नेह को, सारे ममताओं को ये सब रस्सी बनाकर बढ़ दीजिए, बट दीजिए, जैसे पिरोदी है फूल, आइए इसको ठाकुर जी पर चढ़ा दीजिए, ठाकुर जी के चरण में बांध दीजिए, काम खत्म, कहीं कर्म बंधन नहीं। तो वही यहां कहें कि संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैशसि, शुभा शुभ फलई रेव मोक्षसे कर्म बंधनई, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैशसि, वह मुझे प्राप्त करेगा। कैसे? कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावा नुसृतः स्वभावा करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, यत् करोषि यदस् नासी यज्ञोसी ददासी यत् तपस्यसी कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम्। ठीक, शुभ शुभ फलैरेव शुभाशुभ फलैरव मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैशसी। सबकर ममता ताग बटोरी, सबकर ममता ताग बटोरी ममपद बांधो बटबर जोरी। सबको बिटोर सिटोर को मेरे में जोड़ दो, काम खत्म। यह तो हुआ सिद्धांत। कर्म करने वाला व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है, वह अशुभ करे या चाहे अशुभ करे, इसमें कोई शंका नहीं है। किंतु महाराज युधिष्ठिर तो कर्म किए ही नहीं है, उन पर कर्म बंधन लगेगा कहां से? महाराज युधिष्ठिर तो कर्म बंधन कर्म तो किए ही नहीं है, तो उनमें कर्म बंधन लगेगा कहां से? ये तो शोक भी हम संसारी जीवों के लिए कर रहे हैं, समझे? क्योंकि ये कुछ भी कामना से तो किए नहीं। प्रभुपाद जी साफ कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर को पाप छू भी नहीं सकता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया था भगवत इच्छा से किया था। तो भगवत इच्छा से जो व्यक्ति काम किया है तो न कर्म है न विकर्म है न अकर्म है, वो तो
अकर्म है।
देखिए अकर्म का अर्थ मैं कल पढ़ रहा था गीता में ही, अकर्म का अर्थ किया है कि सन्यासी लोग इसलिए अनारंभ कर देते हैं कि उसका भी फल समाप्त हो जाए, समझ रहे हैं? लेकिन हमारे कृष्ण भावना भावित में जो भक्त होते हैं उसको कृष्ण से युक्त कर्म लेते हैं, जो कुछ करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं, तो यह कर्म के अंतर्गत नहीं है। इसलिए अकर्म कहेंगे तो ये कर्म है ही नहीं, कर्म नहीं है, ये अलौकिक है। यह अलौकिक है, अकर्म है, ये कर्म नहीं है। परमार्थिक में भी परम परमार्थिक है, हाँ, इसलिए उन पर ये बंधन भी नहीं है, क्योंकि निजे इंद्रिय वंशा तार नाम काम आ कृष्ण इंद्रिय प्रीति वंशा धरे प्रेम नाम। ये सब कुछ युद्ध भी किए, गद्दी पर बैठे, भगवान के लिए बैठे, तो यहाँ तो ये संभव ही नहीं है। महाराज जो कुछ भी विलाप कर रहे हैं, संतप्त कर रहे हैं, ये तो केवल एक उनका भक्त होने के नाते से इस तरह का दैन्य है। इसीलिए यहाँ कहा ना, स्त्री नाम मत हत बंधु नाम द्रोहो यो सा विभोत्थित कर्मा भी गृह में धीयै नाहं कल्पो विपोहितुम। ये तो केवल दूसरों के लिए है, यह महाराज युधिष्ठिर के लिए नहीं है, ये तो उन्होंने दैन में ऐसा कहा है। तो इस प्रकार इन पर कर्म का नियम लागू नहीं होता है, और जो इंद्रियों के भोग के लिए अपने लिए करते हैं उन पर लागू होता है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीणति आप यदिन्द्रिय यदिन्द्रिय प्रीतिम नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीणति। एक शब्द छूट, एक अक्षर छूट है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय पंचम स्कंध के पांचवा अध्याय के चौथा नंबर का श्लोक है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय आप्नोति। नहीं, भागवत हमारे पास है ना, यहाँ है पांचवा स्कंध के पांचवा अध्याय के चौथा नंबर का श्लोक है। यदिन्द्रिय प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यतयात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेश दया स देह। ये है, ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के तृप्ति के लिए प्रमत्त होकर कर्म करता रहता है, विकर्म करता रहता है, शास्त्र निषिद्ध कर्म कराता है, न साधु मने उसको अच्छा नहीं मानते हैं। असन्न पिकले सदास देह, वह असन है, वह क्षण भंगुर देह को देने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक इस तरह का कर्म करता रहता है, जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है तब तक कर्म करता रहता है, और जिस जब तक इस तरह का अज्ञान जनक अज्ञान मूलक कर्म करता है तब तक उस अज्ञान मूलक कर्म से यह शरीर का बंधन बना रहता है। पांचवा नंबर के श्लोक में, और जब तक मुझ वासुदेव श्री कृष्ण में प्रीति नहीं हो जाती है तब तक वह जन्म मृत्यु रूप चक्र से व्यक्ति छूट नहीं सकता है। इसीलिए सब कुछ को भगवान कहते हैं कि यत क्रोशी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम्, जो कुछ किए सब भगवान को अर्पण कर दीजिए, मुक्त हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ऐसा भगवान ने भी 18वें अध्याय में कहा। तो कहने का भाव है कि महाराज युधिष्ठिर पर पाप का कोई लेस भी नहीं है, उन्होंने इस तरह की दैन्यता तो केवल भक्त होने के नाते ऐसा किए हैं। इसी के साथ श्रील प्रभुपाद की, हाँ प्रभु कर्माणि दहति किंतु च भक्ति भजन, मैं कहा ना कि ये नहीं बोलना है, इसी के नीचे है और इसी के टीका में बहुत बढ़िया तात्पर्य लिखे हैं प्रभुपाद जी, अनुवाद भी लिखे हैं और तात्पर्य अनुवाद से भी ज्यादा बढ़िया लिखे हैं। भोगने पड़ते हैं लेकिन भजन करने से समाप्त हो जाते हैं। जब सब कुछ श्री कृष्ण के लिए अर्पण कर देते हैं वहां कुछ भी नहीं रह जाता है भोगने के लिए। और दूसरी चीज की जहां कुछ दिखाई पड़ता है कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ भक्त कुछ आचार्य भोग रहे हैं तो यह भक्तों के प्रार्थना भगवान भी सुनते हैं। जन्म जन्मांतरों में कुछ ऐसे कुछ रह जाते हैं जिसको भगवान के भक्त नहीं चाहते हैं कि भगवान हमारे पापों को अपने प्रयास से काटे, वो स्वयं भोग कर काटना चाहते हैं। ऐसा एक दो नहीं अनेकों प्रमाण है शास्त्रों में, भक्तमाल में, बाबा से भी सुना हूँ महाराज जी से भी सुना हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि इसको आप भोगने दीजिए। जैसे देने पर भी स्वीकार नहीं करते हैं भक्त लोग, उसी तरह भगवान काटना चाहते हैं फिर भी नहीं काटते। और कुछ ऐसे भी सिद्ध पुरुषों को देखा गया है कि भगवान चाहते हैं फिर भी वो लोग कहते हैं नहीं हम भोगेंगे, मना किए ना। बिल्व मंगल ठाकुर को भी दे रहे थे, नहीं दिए, बस हमें जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है। अभी हम अपने गुरु महाराज को उदाहरण दे रहे हैं कि हरिद्वार में सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो महाराज जी अंत में कहे कि भगवान के हमारे नौकर हैं कि हम भगवान के नौकर हैं, हम भगवान को आदेश दे रहे हैं कि भगवान से हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं या निवेदन करते हैं कि ठीक हो जाए, भगवान हमारे नौकर हैं। और भगवान जब स्वामी है, इष्ट ही है, मालिक ही है, तो क्या उनको पता नहीं है कि किसको क्या करना है? ये सब हमारे लिए कभी प्रार्थना मत करना, हम ठीक हैं, हम ठीक रहेंगे, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम इसी से संतुष्ट हैं, हमको कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसलिए कर्म का दहन होता है भक्ति से, और कुछ अवशेष रह जाता है तो उसको भोग भी अवशेष कर लेते हैं। हाँ, दोनों बातें हैं शास्त्र में। हाँ, वो भी भोग कर समाप्त किए, द्वादश महाभागवतों में से है। क्या भगवान नहीं जानते थे, भगवान नहीं कर सकते थे, निश्चित कर सकते थे, लेकिन भीष्म पितामह को अच्छा नहीं लगता, वो स्वयं अपने किए हुए को भोगना चाहते हैं। भक्त लोग जानबूझकर भोगना चाहते हैं, इसलिए भगवान सोचते हैं चलो भोगता है, हमारा भक्त जो चाहता है वही करना चाहिए। तो ज्ञानी में और अज्ञानी में ही अंतर होता है कि या संसार में तुलसी, या संसार में सुख दुख सबको हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से और ज्ञानी काटे रोय, समझे। ऐसा नहीं कि जो भक्त होते हैं उनके सामने धूप नहीं आती है, धूप आती है, सनातन गोस्वामी चिलचिलाते हुए धूप में समुद्र के तट पर चलते थे मंदिर से बाहर बाहर, और महाप्रभु से मिलने जाते थे, है ना। सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी के चिलचिलाते हुए धूप में चलते, वो भी सामना करते, लेकिन व्यापता नहीं। लेकिन जो वही अज्ञानी है, और वो बड़े आराम से करेंगे, दोनों में अंतर है ना। तो भक्तों को तो सच कहिए तो भक्ति से भी कर्म फल कट जाता है, और कुछ अवशेष रहता है तो उसको भोग कर समाप्त कर लेते हैं। सिद्ध बाबा की कथा है ब्रजमंडल में, वो अपने शिष्य से कहे कि देखो अब हमारा जाने का समय आ गया है, अब हमारा कुछ ही समय रह गया है, इसलिए तुम जाओ। तो काल आया, तो काल कहा नहीं, भोग आया, भोग सामने आया कि प्रभु मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। बोलो तो मैं आपका भोग हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ, भोग हो, हाँ क्या चाहते हो, तो मैं आप पर आना चाहता हूँ, क्या ठीक है, आ जाओ। तो अपने शिष्य को बुलाए और कहे कि देखो अब हमारा समय हो गया जाने का, तो अब हम जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे। तो फिर गुरुदेव, तो हमारा कुछ अवशेष भोग है, वो कहा कि क्या इसको भक्ति से नहीं काट सकते हैं, कि नहीं इसको हम भक्ति के बल से नहीं काटना चाहते, इसको हम भोग कर काटना चाहते हैं। कि कितने महीनों का, कितने वर्षों का, कितने दिनों का है, कहे बस 3 घंटे का है। सारे हमारे भोग पाप जितने भी दुष्कर्म थे सब हमारे भजन के प्रभाव से कट गए हैं, समाप्त हो गए हैं, लेकिन उसका लेस रह गया है 3 घंटे का, उसको मैं स्वयं भोग कर काटना चाहता हूं। मैं चाहूं तो भगवान से कहूं तो काट देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि भोग कर काटूं। अब वो आएगा, तुम कहो तो मैं बुलाऊं, और नहीं तो फिर जाओ यहां से। क्या कि नहीं गुरुजी, मैं आपके भोग को देखना चाहता हूं कि वो आपका भोग है कैसा। कि बेटा तुम नहीं सह पाओगे, नहीं सह पाओगे हमारे भोग को। ये नहीं गुरुदेव, आप कुछ भी करेंगे मैं उसको सहूंगा और देखूंगा कि आपका भोग है कैसा। एक किवाड़ बंद करो और ताली मारो उसमें, नहीं तो हमारा भोग आएगा तो तुम किवाड़ खोल के भाग जाओगे। अच्छा, किवाड़ दिए, ताली बंद कर दिए, चाबी रख दिए जहाँ बैठे थे वहाँ नीचे, और कहे भोग को कि आ जाओ। जब भोग आया तो इतने विक्षिप्त हुए, इतने पागल के तरह हुए, इतने बेचैन हुए कि अपने शिष्य को मारना, गाली देना, इतना उसको परेशान किए कि वो किवाड़ खोल कर भागना भी चाहता तो नहीं भाग सकता, इसीलिए ताला बंद करवा दिए थे। क्योंकि सिद्ध पुरुष थे, त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि क्या होने वाला है। 3 घंटा बिता लिया, 3 घंटा बाहर से सब लोग सुन रहे हैं कि गुरु जी आज बड़े दुख में हैं, ये हैं वो हैं, इससे 3 घंटे जब बीत गया तो वो शांत, भोग खत्म, दोनों गुरु चेला चुप शांत। तब कहे बेटा हमारा भोग समाप्त हो गया, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जो हमको प्राप्त है वो तुमको प्राप्त हो जाए। इतना कहकर शरीर छोड़ दिए कृष्ण ने, चित्तवृत्ति लगा को शरीर छोड़ दिए और जैसा वो सिद्ध हुए उसी तरह उनका चेला भी सिद्ध हुआ। क्या वो चाहते तो अपने कर्म को भक्ति के प्रभाव से भी झेला सकते, भगवान से कहकर भी झेला सकते, लेकिन स्वयं तो भक्त लोग अपना कर्म फल भोगना चाहते। वो तो कमजोर हृदय वाले जो हैं वो जल्दी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे सुनिए, तो उनका सुनेंगे ऐसी बात नहीं है। तो कर्माणि दहति किंतु च भक्ति भाजन गोविंद मादि पुरुषम अमहम भजामि, इससे ऊपर था यस्तेन्द्र गोप मथवेन्द्र महोस्व कर्म बंधान रूप फलभाजन मातनोति कर्माणि दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंद माधि पुरुषम तमहम भजन। तो भक्ति के प्रभाव से कर्म का दहन होता है इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन अवशेष भक्त लोग भोगते भी हैं। और कुछ नहीं, अरे रंती देव महाराज तो सारे जीवों को दुख स्वयं भोगना चाह रहे थे। वासुदेव दत्त की बात जानते ही है, चेतन चेतन प्रसिद्ध बात है, चेतन चेतन
तो
में
तो वासुदेव दत्त को भले तुम्हें भोगना है लेकिन भोगने नहीं दूंगा, लेकिन
तो क्या भगवान अपने भक्तों को भोगने देते हैं क्या? भोगने देते हैं? 3 घंटा भोगना भोगना है क्या? अरे इस पर और कथा सुन लो। एक व्यक्ति जंगल में भजन कर रहा था और भजन करते करते सिद्ध हो चुका था, भजन करते करते सिद्ध हो चुका था, तो उसको मारने के लिए 11 डाकू आ गए। मारने के लिए नहीं आए, पलायन पूर्वक वो जंगल में भजन कर रहे थे, डाकू उधर जा रहे थे, मिल गए, अचानक देखे साधु खड़ा हो जाए, तुमको हम गोली मारेंगे, इधर उधर मत कर, भागोगे तो टेन कर दूंगा, बैठ जा। महात्मा ढेर गंभीर थे, धीरा धीरा तत्र न मोहियति, मृत्यु उपस्थित है फिर भी मोहित नहीं हुए, परीक्षित महाराज भी मोहित नहीं हुए, धीर गंभीर थे, प्राप्त मृत्यु से भी घबराए नहीं। कहे ठीक है, समझ गए कि ये मारेंगे ही छोड़ेंगे नहीं, तो कहे ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, मुझे पता तो चल गया कि आप मारेंगे, कि तो महाराज परीक्षित को पता चला या तो मुझे पता चला मैं मरने वाला हूँ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 2 मिनट टाइम देंगे सुन लेंगे, मुझे 2 मिनट टाइम चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा कि मुझे मारिए मत, मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि मुझे मार दीजिएगा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बोलो, ये सरदार साहब का बोलो, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये सरोवर है इसमें से मैं स्नान कर लूँ और स्नान करके जैसे ही आता हूँ मुझे मार दीजिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। बहुत अनुनय विनय पहले किए थे लेकिन वो कुछ नहीं सुने, अब यही अंतिम वाक्य कहे कि देखो स्नान कर लो, स्नान करके जल्दी आओ, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, 5 मिनट के अंदर जल्दी आ जाए। वो गए जहाँ रहते थे, वहाँ एक तालाब था, झरना जंगल था ही, उस में डूबे स्नान किए और उसमें डूबे जैसे ही स्नान करने लगे, डूबकी लगाकर तो बात करने लगे, तो बात करने लगे तो बात उनको सुनाई पड़ने लगी, डाकू जो बाहर था उसको भी सुनाई पड़ने लगी, पानी में बात कर रहे हैं साधु जी महात्मा जी, वो पानी से बाहर वो डाकू के जो सरदार है उसको सुनाई पड़ रही है। तो बाहर जब निकल कर आए बड़े प्रेम से, बड़े प्रसन्न आनंदित होकर कहे जल्दी मारो मुझे, जल्दी मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो। तो डकैत कहता है सरदार कि लोग मृत्यु से घबराते हैं, ये कह रहा है जल्दी मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो, नाच रहा है, इसको हो क्या गया? सब कहा कि सुनो ठहरो, इतना जल्दी मैं नहीं मारूंगा, ये पहले बतलाओ कि तू पानी में इतना विलंब किया और कुछ हमको सुनाई भी पड़ा है, तू बात कर रहा था, बात किससे कर रहा था और क्या बात किया और क्यों जल्दी मरने के लिए तैयार हो गया, ये सारी बात बतलाओ, पूरा इतिहास सुनाओ। तब कहा कि ठीक है बढ़ जाओ बढ़ जाओ। नहीं, वो डाकुओं से बोला है लेकिन आप लोग भी बढ़ जाओ, डाकुओं से बोला। तो हुआ क्या, तो कहा कि हे दस्युराज, हम जब देखे कि अब हमको मरना है तो मैं सोचा कि गुरु महाराज से एक बार मिल लूं। तो मैं अपने गुरु महाराज का स्मरण किया, प्रणाम किया, उनको बुलाया तो वो आ गए और मैं उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और उनको प्रणाम करके मैं उनसे पूछा कि गुरुदेव, मैं तो जीवन भर भजन किया, मुझे पता है कि इस जीवन में मैं कोई पाप नहीं किया हूँ, लेकिन ये मुझे मारने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये कौन है, ये कब का कर्म है हमारा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप कृपा कीजिए बतलाइए। तो कहे कि बेटा, पिछले जन्म में तुम 100 लोगों का मर्डर किए हो अपने हाथ से और उसमें ब्राह्मणों का भी हत्या किए हो, तो ये 100 लोग तुमको मारने के लिए तैयार थे, तुमको 100 बार मरना पड़ता उन लोगों के हाथ से, लेकिन तुम इतने भजन किए हो कि वो 100 बार वाला एक बार में हो गया है, तो 11 लोग मिलकर तुमको मारेंगे और जल्दी मर जाओगे और भगवत धाम को प्राप्त कर जाओगे, और हम तुमको प्राप्त इसलिए हो गए कि तुम मृत्यु को प्राप्त होकर मुझे याद किए हो, इसलिए मैं आ गया और घबराए नहीं हो, यही भजन का प्रभाव है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये सारी बात हमने गुरु जी से की है और आपको सुना दी, इसलिए आप भैया जल्दी मुझे मार दो, हम पीछे 100 बार तुम लोगों का वध किए हैं और हमको 100 बार मरना पड़ता, अब तो एक ही बार मरेंगे और सीधे भगवान को प्राप्त करेंगे, जल्दी मारो, इस शरीर से मुक्त करो, हम कृपा करो। तो कहता है सरदार कि ऐसे नहीं चलेगा काम, तुम अपने गुरु के पास ले चलो, बुलाओ, दर्शन कराओ, उस गुरु को दिखाओ कैसे महापुरुष है। तब वो कहा कि वो गुरु जी बुलाने से अब नहीं आएंगे, देखना चाहते हो तो हमारे साथ पैदल चलना पड़ेगा। कहाँ है, कहे कि चलो हम चलते हैं। तो 6 महीना में पैदल पहुंचे हिमालय में, भजन कर रहे थे, 6 महीना में चलते चलते पैदल जब पहुंचे, तो जब वहां गए तो उनका दरस परस हुआ, वे 11 सब साधु बन गए, उनका दर्शन किए। तो वो कहते हैं गुरु जी, ये तो साधु बन गए, हमको मारेंगे नहीं तो हम मुक्त कैसे होंगे। अभी एक बार वाला तो रह ही नहीं गया, कहे बेटा 100 बार वाला तो तुमने भजन करके खत्म कर दिया, 100 बार तुमको जो लेना था वो 99 तो भजन करके खत्म कर दिया, और एक बार तुमको हमारे दर्शन से खत्म हो गया, वो जल में जो तुमने निर्विघ्न भाव से भगवान का स्मरण किया और हमारा स्मरण किया और मैं तुमको दर्शन जो दिया, उस दर्शन से ही तुम्हारा मृत्यु खत्म, उस पाप खत्म, इसलिए तुम अपने स्वतंत्रता से और अपने इच्छा के अनुसार मरोगे, अभी कर्म बंधन तुम पर नहीं है, खत्म सब। और उन 11 के कहे कि इनसे दीक्षा लो और भजन करो तब तुम लोगों का निस्तार होगा। तो कर्म उन 11 को दीक्षा दिए, सब सिद्ध हो गए, सब भगवान को प्राप्त हो। तो कहने का भाव कि कर्म टल जाता है, बहुत कर्म है ग्रहित तो थोड़ा होकर मिलता है और वो थोड़ा भी टल जाता है हरे कृष्ण। एक गुरु की कृपा से। बोल गुरुदेव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। देखो लाइन कट जाता है ना, सामने सामने लाइए उस श्लोक को, तब देखेंगे। गीता है, प्रभुपाद जी वाला दीजिए।